नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। छठ पर्व के समापन के बाद एनडीए और महागठबंधन ने दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान मोन्था कमजोर होकर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदला। भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान और स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा माध्यमों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमत हुए। गाजा पर इसराइली हमले में 33 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल ने समझौते के उल्लंघन के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया, हमास का आरोप से इनकार। और कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला का पहला T20 क्रिकेट मुकाबला फिलहाल बारिश के कारण रुका हुआ है। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। छठ पर्व के समापन के बाद एनडीए और महागठबंधन ने नेता अपने उम्मीदवार के समर्थन में राज्य में कई रैलियां कर रहे हैं।
सीवान जिले के रघुनाथपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने से बिहार विकसित राज्य बनेगा और यहां कानून व्यवस्था अच्छी होगी। श्री आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार फिर से पीछे चला जाएगा। इधर समस्तीपुर के सरायरंजन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए के पास कोई विजन नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा के हायाघाट और पटना के बाढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज महागठबंधन के नेताओं के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एनडीए की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। धर्मेंद्र कुमार राय।
एनडीए और महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार की जनता पहले भी महागठबंधन के काम देख चुकी है और अब वह गुमराह नहीं होंगी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं एक प्रतिज्ञा है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि महागठबंधन घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा करेगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री ने समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। वे आज दरभंगा और बेगूसराय में भी जनसभा करेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान मोन्था तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना के ऊपर कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर चक्रवाती तूफान पिछले 6 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिमी और की ओर बढ़कर कमजोर हो गया है। विभाग के अनुसार अगले 6 घंटों में चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने और दबाव के क्षेत्र में कमजोर पड़ने की संभावना है। चक्रवात मोन्था कमजोर होकर कल रात आंध्र प्रदेश के मिचिलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के दक्षिण में नरसापुर में पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश सरकार चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में जनजीवन बहाल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा कर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जल्द ही नुकसान का आकलन करने के निर्देश भी दिए। पुलिस, राजस्व, अग्निशमन, चिकित्सा और आपदा प्रतिक्रिया दल युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। सरकार लोगों को भोजन और पेयजल सहित अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। सड़क, रेल और हवाई सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गई हैं। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट।
चक्रवाती तूफान मोन्था के प्रभाव से कोलकाता और आसपास के इलाकों में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है। कल तक यह स्थिति बने रहने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा के अम्बाला स्थित वायुसेना स्टेशन से रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ये उड़ान लगभग 25 मिनट की थी। आज सुबह वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सभी मुद्दों को हल करने की मौजूदा तंत्र को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय 25 अक्टूबर को चुसूल मालदो सीमा चौकी पर भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 23वें दौर की बैठक में लिया गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति कायम है। मंत्रालय के अनुसार यह वार्ता मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इसराइल के गाजा पर लगातार हवाई हमले में 33 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स ने हमास पर गाजा में इसराइली सैनिकों पर हमला करने और मृत बंधकों के शवों को वापस करने की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। हालांकि हमास ने इन आरोपों को इनकार कर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में तत्काल हमले करने के निर्देश दिए गए। अमेरिका के अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका को गाजा में हमले करने के फैसले के बारे में सूचित किया गया था। केंद्र श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज शाम नई दिल्ली में इस वर्ष का आकाशवाणी सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एन मुरुगन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। व्याख्यान की रिकॉर्डिंग 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देश शामिल होंगे। आयोजन में 1,00,000 से ज्यादा प्रतिनिधि और 500 से ज्यादा प्रदर्शक भी हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
मुंबई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत समुद्री सप्ताह 2025 के मैरिटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। श्री मोदी आज शाम ग्लोबल मैरिटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। सोमवार को शुरू हुए 5 दिवसीय भारत समुद्री सप्ताह में नीति निर्माताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने बंदर का अवसंरचना, हरित ऊर्जा और रक्षा जहाज निर्माण जैसे विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किए। इस कार्यक्रम के द्वारा एक बार फिर भारत ने तकनीक, नवाचार और स्थिरता से संचालित ब्लू इकोनॉमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। प्रार्थना, आकाशवाणी।
कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला का पहला T20 क्रिकेट मुकाबला फिलहाल बारिश के कारण रुका हुआ है। इससे पहले भारत ने 10वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। वस्तु और सेवा कर GST बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि GST की कम दरें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दे रही है।
नए GST सुधारों ने मध्य प्रदेश के किसानों, कारीगरों और व्यवसायों को राहत प्रदान की है। इन सुधारों के चलते उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद सस्ते हुए हैं और निर्माताओं के मार्जिन में भी सुधार हुआ है। नमकीन पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिए जाने के बाद राज्य के स्नैक्स केंद्र इंदौर को बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है। इसी प्रकार ट्रैक्टर और पंप जैसे कृषि उपकरण और कृषि मशीनरी पर अब केवल 5% GST के चलते राज्य के किसानों के लिए कृषि उपकरण खरीदना सुलभ हो गया है। वहीं 2,500 रूपये तक के फुटवेयर पर GST 18% से घटाकर 5% कर देने के कारण इंदौर और ग्वालियर की औद्योगिक इकाइयों को मजबूती मिली है। GST सुधारों ने मध्य प्रदेश के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद की है। साथ ही राज्य की स्थानीय उत्पादन श्रृंखलाओं और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। समर्थ के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कपड़ा उद्योग में व्यापार बाधाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालेगी। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी व्यापार शुल्कों से जुड़ी अमेरिका और भारत के बीच जारी वार्ताओं को लेकर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की थी। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मुश्किल समय में सौहार्दपूर्ण समाधान और वार्ताओं के लिए दुनिया भर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची से टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर केंद्रित भारत जापान वैश्विक रणनीति और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। चक्रवाती तूफान मोनता कमजोर होकर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदला। भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान और स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा माध्यमों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमत हुए। गाजा पर इसराइली हमले में 33 फिलिस्तीनी मारे गए। और कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला का पहला T20 क्रिकेट मुकाबला फिलहाल बारिश के कारण रुका हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।